नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 5,000 करोड़ रुपए डालने का भी निर्णय। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की स्पेन के विदेश मंत्री होसे मैनुअल अल्वारेज ब्यूनो से नई दिल्ली में मुलाकात। विश्व से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आह्वान। लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रकाश डाला। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 27 वर्ष की उल्लेखनीय सेवा के बाद अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से सेवानिवृत्त। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावारोफ ने कहा, ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वाभाविक हिस्सा नहीं। कहा, यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने वाली औपनिवेशिक विरासत। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम नागपुर में। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने आज अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने के साथ ही प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8,66,00,000 से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। एक रिपोर्ट।
आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये योजना मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये योजना 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 1,000 से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। ये लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है। सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत सहायता राशि भी स्वीकृत की है। इससे 25,74,000 से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों से जुड़े लाभार्थियों को फायदा मिलने की आशा है। अंकित और दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि विश्व के देशों के लिए आतंकवाद से निपटने में साझा चुनौतियों पर सहयोग करना पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक है। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्पेन के विदेश मंत्री होसे मैनुअल अल्वारेज ब्यूनो के साथ बैठक के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और स्पेन दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है और दुनिया को आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए।
It is more imperative than ever before.
राष्ट्र के लिए चुनौतियों को हासिल करना बेहद जरूरी है। भारत और स्पेन आतंकवाद से जूझ रहे हैं। हमें साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और बढ़ती आर्थिक साझेदारी के आधार पर भारत स्पेन के संबंधों को मजबूत करना होगा।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अगले महीने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दोहरे वर्ष के रूप में नामित किया है।
भारत और यूरोप एआई के क्षेत्र में साझा दृष्टिकोण रखते हैं। एआई के प्रति हमारी सोच मानव केंद्रित और नैतिक उपयोग पर आधारित है। हमें विश्वास है कि ये वर्ष अधिक संस्थागत और उद्योग को प्रोत्साहित करेगा।
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और स्पेन इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में आज विश्व आर्थिक मंच में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्णा और मेटा के वैश्विक मामलों के मुख्य अधिकारी जोएल कपलान से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि दुनिया भारत को नवाचार के प्रमुख केंद्रों के रूप में देखती है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में एआई पर 70 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में 50 अरब अमरीकी डॉलर का और निवेश होने की उम्मीद है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी देश में चुनाव आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभ हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया।
प्योर इलेक्टोरल रोल, प्रत्येक पात्र मतदाता को शामिल करते हुए निष्पक्ष मतदाता सूची बनाए रखना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्टोरल रोल,
श्री कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में चुनाव प्रबंधन निकायों के संचालन में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। 3 दिन का ये सम्मेलन लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन की दिशा में भारत द्वारा आयोजित सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है। विश्व के 70 से अधिक देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में अपनी पहली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और भविष्य की रणनीति तैयार करना है। श्री नितिन नबीन कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक ऐसे शासन मॉडल पर जोर दिया है जो देश की सभ्यतागत जड़ों का सम्मान करे, उसकी विरासत और संस्कृति को महत्व दे तथा विकास प्रदान करे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के तुमकुरु में श्री सिद्ध गंगा मठ में श्री शिव कुमार महास्वामी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और विरासत में सामंजस्य स्थापित किया है।
Importantly, the revival of Hindu consciousness under Sriman Narendra Modi ji's leadership is about the dignity of knowing who we are, where we come from, and what the values guide us to march forward.
सिक्किम के छात्रों के एक समूह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि गदर क्रांति से लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना तक रास बिहारी बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम को विद्युत क्षेत्र की रीढ़ बताया। श्री मनोहर लाल नई दिल्ली में अखिल भारतीय डिस्कॉम एसोसिएशन विद्युत वितरण उद्योग 2026 के पहले वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट मीटरिंग को प्रोत्साहन देकर विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने सशक्त सैन्य शक्ति और उसके उपयोग के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यता विषय पर 22वीं सुब्रतो मुखर्जी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य शक्ति ही राष्ट्रीय शक्ति का अंतिम मापदंड है। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने ड्रोन्स रीडिफाइंड द इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑन यूएएस वॉरफेयर नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज 2 सीटों वाला एक छोटा विमान तालाब में गिर गया। तालाब में पानी होने के कारण दुर्घटना के बाद विमान में आग नहीं लगी। दुर्घटना से ठीक पहले दोनों पायलट ने पैराशूट खोलकर तालाब में छलांग लगा दी। स्थानीय निवासियों और केपी कॉलेज के छात्रों ने दोनों पायलट को तालाब से बाहर निकाला। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ये राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत परंपराओं और असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन राज्यों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनूठी परंपराओं, भाषाई विविधता और उद्यमशील लोगों के माध्यम से देश के ताने बाने को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि त्रिपुरा की विकास यात्रा परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि मेघालय की जनता ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित द्वितीय चरण के अंतर्गत वंदे मातरम का आज सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया। मंत्रालय ने कहा है कि इस आयोजन में सभी प्रतिभागियों ने पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले इन शाश्वत छंदों के प्रति श्रद्धा का अनुभव किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जानी मानी अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की दुनिया को अलविदा कह दिया है। सुनीता विलियम्स 27 वर्षों की उल्लेखनीय सेवा के बाद अंतरिक्ष एजेंसी से सेवानिवृत्त हो गई हैं। उनकी सेवानिवृत्ति 27 दिसंबर 2025 से मानी जाएगी। एक रिपोर्ट।
4, 3, 2, 1।
अंतरिक्ष से जुड़े अभियानों का नाम सुनते ही हर व्यक्ति का मन अद्भुत रोमांच और उत्साह से भर जाता है। पृथ्वी की सतह से सुदूर ऊपर, आकाश से परे, अंतरिक्ष की ऊंचाइयां शुरुआत से ही इंसानी मन में कौतूहल जगाती रही हैं। करोड़ों भारतीयों के दिलों में अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़ी इन्हीं जिज्ञासाओं और आश्चर्यों के रहस्योद्घाटन की अलख जगाने वाली भारतीय मूल की अमरीकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितम्बर 1965 को अमरीका के ओहायो में हुआ। सुनीता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमेरिका में पूरी की। सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 3 मिशनों में उड़ान भरी और अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए। उन्होंने 9 स्पेस वॉक पूरे किए, जिनकी कुल अवधि 62 घंटे से अधिक रही। ये महिला श्रेणी में सबसे अधिक समय है। वे अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली भी पहली महिला थी। अपने करियर के दौरान विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण, रूस में अभियानों और भविष्य के चंद्रयान मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने सहित जमीनी स्तर पर नासा में भी योगदान दिया। उनका जीवन सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।
I think we all want to look for our home. Where's I grew up in Massachusetts. My father's from India. My mother's from Slovenia. So I'm obviously looking for these places to call home. It really makes you feel like we are just one, and we all should probably work a little bit closer and easier together.
समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उपनिवेशवाद की निशानी है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना का उल्लंघन करती है। एक रिपोर्ट।
कल एक संवाददाता सम्मेलन में श्री लावरोव ने कहा कि ग्रीनलैंड ऐतिहासिक रूप से नॉर्वे और डेनमार्क का उपनिवेश था। ये 20वीं शताब्दी में डेनमार्क का संबद्ध क्षेत्र बना। श्री लावरोव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 17 ऐसे क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है जो अभी भी किसी अन्य देश के नियंत्रण में है। इस संदर्भ में उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन से जुड़े उदाहरण भी दिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के नाते रूस का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के कदम का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर लगातार टैरिफ बढ़ाने की भी बात कही, जिससे इस क्षेत्र पर विवाद और बढ़ गया है। समाचार कक्ष से फरहत नास।
क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 79वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप आज असम में शुरू हुई। प्रतियोगिता के ग्रुप ए के मैच में राजस्थान ने उत्तराखंड को 3-2 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 5,000 करोड़ रूपये डालने का भी निर्णय। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की स्पेन के विदेश मंत्री होसे मैनुअल अल्वारेस ब्यूनो से नई दिल्ली में मुलाकात। विश्व से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आह्वान। लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 27 वर्ष की उल्लेखनीय सेवा के बाद नासा से सेवानिवृत्त। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।